अर्पा रेडियो पर प्रस्तुत है कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है। इस कार्यक्रम में हम आपको फिल्म जगत के कुछ प्रतिष्ठित और कुछ उभरते हुए कलाकारों से मुलाकात करवाते हैं। इनसे मुलाकात करते हैं सजीव सारथी, रेडियो प्लेबैक इंडिया के सौजन्य से प्राप्त। आइए सुने आज का ये कार्यक्रम।
दोस्तों, संगीत की दुनिया में अधिकतर लोग जहां एक भेड़ चाल में बह निकलते हैं, वहीं बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसे नए प्रयोग करने की हिम्मत कर जाते हैं जो अपने आप में एक मिसाल बन जाता है। गीतों में स्वांग का मिश्रण करना एक ऐसा ही अनूठा प्रयोग है और इस लाजवाब कोशिश को अंजाम देकर लोकप्रिय बनाया है हमारे आज के मेहमान संगीतकार ने। दोस्तों नमस्कार और स्वागत आप सबका हमारे कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है में। मैं हूं आपका साथी सजीव सारथी और हमारे आज के मेहमान हैं अद्भुत प्रतिभा के धनी संगीतकार रोहित शर्मा। रोहित भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो प्लेबैक इंडिया पर।
बहुत बहुत शुक्रिया सजीव जी।
रोहित भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आपकी ताजा प्रदर्शित फिल्म बुद्धा इन ए ट्रैफिक जैम के लिए। इस फिल्म के लिए आपने कमाल के गीत रचे हैं, तो सबसे पहले इसी फिल्म के बारे में हमें कुछ बताइए, कैसे आप इस फिल्म का हिस्सा बने?
जब विवेक अग्निहोत्री सर से मैं मिला इस फिल्म के म्यूजिक के सिलसिले में, तो हमारी काफी मीटिंग्स हुई, दो तीन बार हम लोग मिले और मैंने काफी उनको अपना पहले का किया हुआ काम सुनाया जो उनको काफी एक्साइटिंग लगा और उन्होंने कहा हम साथ में काम करेंगे, लेकिन मीटिंग्स दो तीन होती रही। फिर एक दिन अचानक मैंने उनको हमारे स्वांग बैंड का हमने एक सॉन्ग बनाया था, फैज अहमद फैज की नज्म है ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते, तो इस नज्म को हमने कंपोज किया था अपने बैंड के लिए, तो वो मैंने उनको सुनाया। तो जैसे ही मैंने उनको ये सुनाया तो उन्होंने कहा नाउ यू आर टॉकिंग बिजनेस रोहित शर्मा, हम इस फिल्म पे साथ में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से इस फिल्म की शुरुआत हुई।
ओके, तो इस तरह से फैज साहब हमारे फिल्म का हिस्सा बने। तो ये बताइए कि ये फैज साहब की जो आपने नज़में और गजलें इसमें इस्तेमाल करी है, तो ये फिल्म के सब्जेक्ट के ऊपर आपने इसको रखा? क्योंकि मुझे लगता है कि जहां तक मैंने ट्रेलर्स देखे अभी फिल्म के, मूवी नहीं देख पाया हूं, तो ये कुछ आपका नक्सलाइट प्रॉब्लम्स को लेकर है, कुछ समाजवाद और पूंजीवाद को लेकर है, तो एक वो जो बगावती तेवर है उसकी रिक्वायरमेंट थी, इसलिए फैज को आपने शायद इस्तेमाल किया, क्या ये सही है?
जी हाँ, ऐसा ही है। इनफैक्ट मतलब ये दोनों नज्में, मतलब ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते, ये भी फैज साहब की है, और एक और हमने नज्म यूज की है उनकी, चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज। ये दोनों नज्में जो हैं वो हमारी पहले से तैयार थी, मगर इन्होंने विवेक जी को लगा कि इस फिल्म के अंदर ये तेवर एक तरफ का दिखना चाहिए, तो सोशलिस्ट तेवर जो है वो इस रूप में दिखना चाहिए, इसलिए ये इस्तेमाल किया गया।
जी रोहित भाई, चंद रोज तो बहुत ही खूबसूरत कंपोज किया है आपने और मैं अपने श्रोताओं को ये सुनवाने के लिए बेताब हो रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि इस गजल की जो मेकिंग थी, जाहिर है आपने फिल्म से पहले ही इस गीत को बना के रखा था, तो कैसे ये जो नज्म है आपने चुनी और इसकी इतनी प्यारी धुन बनाई, इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन रही आपकी, और पल्लवी जोशी को ही आपने क्यों लिया बतौर गायिका इसके अंदर, ये भी मैं जानना चाहूंगा।
ये नज्म जो बनाई थी मैंने, स्वांग नाम का बैंड जो हमारे मित्र रविंदर रंधावा का बैंड है, रविंदर रंधावा और स्वरा भास्कर जो एक्ट्रेस है उनका ये बैंड था और आज भी है, तो उसमें एंट्री लेने के लिए मैंने ये कॉम्पोजिशन शैली बनाई थी। वो चाहते थे कि हम कुछ इस तरह की गीत गजल नज्में जो हैं वो कंपोज करें, वो अपनी एक एल्बम के लिए चाहते थे, स्वांग के लिए। तो तब ये पहली नज्म थी जो मैंने चुनकर, जो उन्होंने मुझे बोली थी कि ये हम करना चाहते हैं, तो ये मैंने कंपोज की थी उनके लिए, तो ये मेरी एंट्री टिकट थी टू स्वांग। और दूसरी नज्म जो मैंने कंपोज की थी वो थी एमी फैज साहब की थी, ये गलियों के आवारा बेकार, तो ये मेरे लिए दोनों नज्में जो थी वो बेसिकली स्वांग में एंट्री के लिए थी, और उसके बाद से मैं भी स्वांग का एक अंतरंग मेंबर बन गया। और पल्लवी जी को गवाने की वजह ये थी कि पहले फिल्म में एक ऐसा सीन था जिसमें ये गाना पल्लवी जी और अनुपम खेर साहब जो है वो मिलकर गाते हैं, अनुपम खेर साहब उसको बोलते हैं और पल्लवी जी उसको गाते हैं, तो ऐसा फिल्म में सिचुएशन था, तो हमने सोचा था पल्लवी जी इतना अच्छा गाती हैं तो क्यों ना वही फिल्म, मतलब वही खुद इसको गाए, तो हमने वही कोशिश की, और मतलब मेरे घर पे ही रिकॉर्ड हुआ था ये, एक सिंपल SM58 पे रिकॉर्ड हुआ था, उसके बाद इसको हम कभी रिकॉर्ड कर ही नहीं पाए, तो ये वही रिकॉर्डिंग है जो सबसे पहली रिकॉर्डिंग घर पे ही गई थी।
वाह, कमाल की बात है। तो चलिए पहले श्रोताओं को यही नज़्म सुनाते चलें।
चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज, जुल्म की छांव दम लेने पे मजबूर है हम, एक जरा और सितम सहले तड़प ले रो ले, اپنے اجداد کی میراث ہے، معذور ہیں ہم، چند روز اور میری جان، فقط چند ہی روز، جسم پر قید ہے، جذبات پہ زنجیریں ہیں، فکر محبوس ہے، گفتار پہ تازیریں ہیں،
اور اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں۔
زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے، جس میں ہر گھڑی درد کے پیبند لگے جاتے ہیں، چند روز اور میری جان، فقط چند ہی روز۔
روہت بھائی، اس نظم کو سن کر تو مزہ ہی آ گیا۔ جہاں تک میری جانکاری ہے کہ شپ آف تھیسیس آپ کی پہلی ریلیز فلم تھی، لیکن اس سے پہلے ایک سنگھرش کی لمبی داستان بھی آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو تھوڑا سا ہمیں بتائیے وہ سمے جب آپ دلی سے ممبئی آئے، اور جو سنگھرش میں آپ نے دیکھا، جو سنگھرش آپ نے کیا، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں وستار سے بتائیے۔
دیکھیے، باہری سنگھرش جو ہوتا ہے اس کو تو میں اس کیس میں سنگھرش نہیں مانوں گا، کیونکہ جو راہ میں نے چنی ہے، جس کو میں پسند کرتا ہوں، یعنی میوزک کو میں پسند کرتا ہوں اور اسی میں میں آگے کام کیا ہے ہمیشہ اور کرنا چاہتا ہوں، تو وہ سنگھرش تو کو میں سنگھرش نہیں مانتا، بٹ ایک آنترک سنگھرش ضرور ہوتا ہے جو کہ آپ اپنے ہی کرافٹ کو نکھارنے میں کرتے ہیں۔ تو جس سمے میرے پاس بہت زیادہ کچھ کام نہیں تھا اور میں کافی چھوٹے چھوٹے کام کر رہا تھا، بٹ تو وہ اگر آپ اس کو اس پیریڈ کو سنگھرش کا مان لیں، تو میں یہ کہوں گا میرا اس سمے زیادہ سنگھرش ذاتی طور پہ اپنے آپ سے تھا، اپنے کرافٹ کو سنوارنے میں اور نکھارنے میں، تو میں اسی میں میرا دھیان لگا رہا، کیونکہ جو راہ آپ اپنی مرضی سے چنتے ہیں اس میں ویسا کوئی باہری سنگھرش تو میں نہیں مانتا ہوں کہ ہوتا ہے، باقی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر سنگھرش میں نے صرف اپنے کرافٹ کو نکھارنے میں کیا، اس کے علاوہ میرا کوئی سنگھرش ایسا رہا نہیں۔
اچھا، شپ آف تھیسیس کے بارے میں کچھ بتائیے، اور اس فلم کے بارے میں، اور اس میں جو آپ کا گیت تھا نا ہم جنامی، اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے ہمیں۔
آنند گاندھی سے میں ملا تھا، میرے ایک اور متر ہیں، ان کے تھرو، اروندن نام ہے ان کا، وہ بھی ڈائریکٹر ہے، تو ان کے تھرو میں ان سے ملا تھا، اور آنند جو ہے ان کو، انہوں نے مجھے یہ مطلب ایک پیج دیا تھا جس میں یہ پراکرت بھاشا میں لکھا گیا تھا پورا ٹیکسٹ، اور اس میں کوئی چھند نہیں تھا، تو یہ ایک فری فلوئنگ مطلب ہوتا ہے مکت چھند لکھا ہوا کچھ ٹیکسٹ تھا، کافی سارا کافی لمبا تھا، یہ سنسکرت تھوڑی بہت سمجھ میں آتی ہے بٹ پراکرت میں اتنی سمجھ نہیں پا رہا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے اس کا انگلش ٹرانسلیشن ملے گا، تو انہوں نے انگلش ٹرانسلیشن بھی دیا ساتھ میں، تو میں نے سمجھا کہ کیا ہے، اور ان سے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ کس طرح کی کمپوزیشن آپ چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے مجھے اس میں بھجن تو نہیں چاہیے، نہ ہی ایسا لگے کہ وہ جو نارمل چینٹنگ ہوتی ہے ہمارے یہاں ٹیکسٹ کی، اس طرح کا بھی نہیں چاہیے، کچھ ایسا چاہیے جو بہت پرمیٹیو، بہت ہی پرانا، بہت پراتتو ٹائپ کا لگے، تو اس طرح کا فیلنگ آنا چاہیے اس کمپوزیشن میں، تب میں نے پھر اس کو اچھند جو چیز تھی اس کو پھر میں نے چھند میں ڈھال کے یہ کمپوزیشن بنائی، مطلب لوگوں کو اچھی لگتی ہے، پرمیٹیو لگتی ہے، آنند گاندھی کو کافی پسند آئی اور انہوں نے ریٹین کیا اس کو۔
جی روہت بھائی،
گلیوں کے آوارا بیکار کتے، آئے گلیوں کے آوارا بیکار کتے، کالے پیلے نیلے سب رنگدار کتے، بخشا گیا جن کو زوکے گدائی، زمانے کی پھٹکار سرمایا ان کا، جہاں بھر کی دکار ان کی کمائی، بس ٹرک ٹرین اور ٹراموں میں بے شمار کتے، آئے گلیوں کے آوارہ بیکار کتے۔
دو दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है और आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं संगीत और टैलेंट का खजाना संगीतकार रोहित शर्मा जी। रोहित भाई, इतना लंबा और गहरा तजुर्बा आपका रहा है, आपने 90 के दशक के संगीत को भी जिया है और आज के दौर में जो चल रहा है उससे भी आप वाकिफ हैं, तो इंडस्ट्री में संगीत की दुनिया में आज के दौर को आप किस तरह से आंकते हैं, प्लीज बताइए जरा।
संगीत मैंने मतलब 40-50 से जब से मतलब बॉलीवुड में म्यूजिक शुरू हुआ तब से अब तक का सारा संगीत सुना ही है मैंने, तो ऑल इंडिया रेडियो ही मेरे गुरु रहे हैं पहले। तो इस पर मैं ये कहूँगा कि जितना भी संगीत अब तक सुना है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि इस समय जो आजकल जो दौर चल रहा है वो काफ़ी कंफ्यूज्ड म्यूजिक का दौर चल रहा है, बट साथ ही साथ बहुत सारी संभावनाओं को जन्म देता है एक दौर है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो समय है जिस समय बहुत कुछ ऐसा हो सकता है कि बहुत रिवोल्यूशनरी काम हो सकता है म्यूजिक में, और होने वाला मुझे ऐसा लगता है बहुत लोग करने वाले हैं, मतलब मैं ही नहीं बहुत सारे लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी किसी भी आर्ट फॉर्म या इतिहास में कभी भी मानवता के किसी भी पड़ाव पे जब इस तरह की कन्फ्यूजन होती है तो कुछ ना कुछ तो रिवोल्यूशनरी आता है। जैसे मुझे लगता है कि लेट 80 के दशक में काफ़ी ख़राब संगीत की हालत थी बॉलीवुड संगीत की, तो उसके बाद फिर काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा म्यूज़िक, नदीम श्रवण और जतिन ललित और काफ़ी सारे लोगों ने उस समय बहुत बढ़िया म्यूज़िक किया और अचानक से फिर से बहुत मेलोडी आ गई। अभी क्या हुआ है कि ये अपना ऑनलाइन स्पेस जो इतना ज़्यादा बड़े तरीके से हमारे जीवन में आ गया है कि अभी हर तरह का म्यूज़िक जो है वो हम सुन सकते हैं और मतलब बहुत लोग जो है उससे इंस्पायर होते हैं, बहुत से लोग कॉपी भी करते हैं, तो उसकी वजह से अचानक भी इतना बड़ा सैलाब आ गया है पूरे दुनिया के संगीत का, उसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूज़न है इस समय कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा और कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए। बट मुझे लगता है इसी में से बहुत कमाल की संभावनाएं निकलेंगी और बहुत अच्छा संगीत बहुत जल्दी ही आने वाला है, ये मुझे लगता है, मतलब मैं इसके लिए काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक। सॉरी, मैं एआर रहमान साहब का नाम लेना एकदम स्किप कर गया, मैं भूल गया एकदम, लेकिन 90 के दशक में उनका एक बहुत बड़ा हाथ है वापस मेलोडी संगीत में लाने के लिए और एक नया साउंड, एक नई किस्म का साउंड जो है वो बॉलीवुड को देने के लिए, दुनिया को देने के लिए।
जी रोहित भाई, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपने आज के संगीत को डिफाइन किया है अपने इस वाक्य में कि बहुत ही एक कन्फ्यूज दौर और चल रहा है और बहुत ही इसमें संभावनाएं भी ज़्यादा नज़र आ जाती हैं। ये बताइए कि आपने अब तक बेहद इंटेलेक्चुअल्स और क्लास ओरिएंटेड फिल्मों के लिए काम किया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यावसायिक फिल्म निर्माता निर्देशक आपसे एक दूरी बना के रखते हैं इस वजह से?
नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने इनफैक्ट जो शुरुआत की थी वो कॉमर्शियल फिल्म से की थी, मैं उनका भी फिलहाल नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन वो दोनों फिल्में इन्हीं कारणों से रिलीज नहीं हो पाई, बट वो दोनों प्रॉपर कॉमर्शियल फिल्म थी और उसके अंदर काफ़ी उस तरह के नंबर्स थे, मतलब रोमांटिक और जिसमें मतलब टिपिकल बॉलीवुड में जिस तरह के रोमांटिक नंबर्स होते हैं या आइटम नंबर्स होते हैं या वो सब थे उसके अंदर। इनफैक्ट मैंने अभी अभी एक फिल्म का म्यूज़िक कम्प्लीट किया, उसका बैकग्राउंड स्कोर कर रहा हूँ, फिल्म का नाम है अनारकली आरा वाली। आरा जो है ये बिहार का एक ज़िला है, आरा छपरा, तो ये लड़की जो है वो अनारकली आरा वाली जो है वो डबल मीनिंग सॉन्ग्स गाती है वहाँ पर, उसकी कहानी है, डबल मीनिंग सॉन्ग्स गाती है, एक्सप्लिसिट सॉन्ग्स गाती है, उसकी एक कहानी है जिसके अंदर बहुत तरह के बिहार बेस्ड जो हैं गाने हैं जो काफ़ी कमर्शियल हैं अपने मतलब हर अंदाज में, तो करीब 7-8 गाने हैं उसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर है, हालांकि फिल्म की जो कहानी है काफ़ी अलग है उससे, काफ़ी अलग दिशा में जाती है, मगर कहानी एक ऐसी लड़की की है जो वहाँ पर डबल मीनिंग गाने गाती है, एकदम कमर्शियल सिनेमा है और स्वरा भास्कर हैं इसके अंदर लीड में और इसको डायरेक्ट किया है अविनाश दास जो पहले NDTV में थे, पत्रकार थे, और इसके प्रोड्यूसर हैं मिस्टर संदीप कपूर।
जी रोहित जी, इस फिल्म में अविनाश जी तो मेरे मित्र हैं ही और एक मेरे प्रिय मित्र डॉक्टर सागर भी हैं जिन्होंने इस फिल्म के गाने लिखे हैं, तो काफी अच्छा प्रोजेक्ट है जिसके लिए मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बाकी ये बताइए कि जो हमारे इंडस्ट्री में जो संगीतकार हैं उनमें से आपका भी कोई आदर्श रहा होगा, कोई प्रेरणा रही होगी, मतलब जिनको आप मानते हैं कि हाँ ये एक मुकम्मल संगीतकार हैं और इनको मैंने फॉलो किया है, तो ऐसे कुछ नाम बताइए जिनसे आप प्रभावित रहे हैं।
सजीव जी, मेरा ये मानना है कि सभी कंपोजर्स ने इतना बढ़िया बढ़िया काम किया, इतना कमाल का काम किया है कि मैं मतलब किसी एक का नाम लेना तो बहुत मुश्किल है, तो आज भी बहुत से कंपोजर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी कुछ कृतियाँ ऐसी होती हैं जिनको देख के सुन के ऐसा लगता है कि ये मैंने क्यों नहीं किया, ये मैंने क्यों नहीं बनाया। तो ये ज़रूर कहूँगा कि मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा हूँ SD Barman साहब से, उसकी वजह दो है, एक तो ये कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 100 में से 90% उनकी कॉम्पोजिशन अच्छी ही होती हैं और उन्होंने सबसे ज़्यादा मेलोडी पे ही काम किया है हमेशा,
और दूसरी बात यह कि उन्होंने सबसे लंबी पारी खेली है, मतलब आप सोचिए कि 40s से उन्होंने गाने गाने शुरू किए थे, अपने गाने बनाने शुरू किए थे, और एंड 40s में उनको बॉलीवुड में अच्छा ब्रेक मिला था, और वहाँ से लेकर ऑलमोस्ट शायद 72-73 तक, शायद 74-75 तक उन्होंने काम किया है। तो सबसे लंबी पारी उन्होंने खेली है संगीत जगत में बॉलीवुड में, और उन्होंने मतलब उस एरा से काम करना शुरू किया जिस समय नया नया संगीत जो है फिल्मों में आया था, वहाँ से लेकर लास्ट फिल्म उनकी शायद मिली या अभिमान या फिर चुपके चुपके, मतलब ये उनकी आखिरी फिल्मों में से है, या अनुराग थी शायद। तो उन्होंने जितना एक्सपेरिमेंटल काम किया है वो मतलब उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि किस एरा से लेकर कहाँ तक आप लगातार लीड लिए हुए हैं सबसे। तो मैं सबसे ज्यादा उनसे प्रभावित हूँ आज।
जी एकदम सही कहा आपने। अच्छा थोड़ी सी चर्चा आपके संगीत ग्रुप की हो जाए जिसका आपने नाम है स्वांग, तो ये स्वांग में संगीत है या संगीत में स्वांग?
स्वांग जो है वो एक स्वांग ग्रुप है जिसमें हम लोग नाटक भी करते हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स भी हैं इसके अंदर, डायरेक्टर्स भी हैं, राइटर्स हैं, और सिंगर्स हैं, कंपोजर्स हैं, जिसमें स्वांग बैंड है उस ग्रुप का ही पार्ट है, और इस बैंड के थ्रू हम काफ़ी प्रोग्रेसिव किस्म का म्यूजिक जो है बनाते हैं, उस तरह की पोइट्री को आगे बढ़ाते हैं। तो जो भी समाज में चीज़ें जिनके लिए आवाज़ उठानी ज़रूरी है हमें ऐसा लगता है, तो उस आवाज को उठाने के लिए उठाने का काम करता है ये बैंड हमारा, स्वांग जो बैंड है। तो स्वांग बैंड जो है वो बेसिकली स्वांग ग्रुप का एक पार्ट।
जी बहुत ही अनूठा प्रयोग है आपका और आपकी पूरी टीम का, खासतौर पर वो गीत जो आपने निर्भया के लिए बनाया था वो तो कमाल ही है, उस गीत के बारे में भी कुछ थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को।
2012-16 दिसंबर को ये जो घटना घटी थी, दुर्घटना, इससे हम काफी ज्यादा डिस्टर्ब थे हम लोग सब, और हमें उस समय ये लग रहा था कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। और उस समय रविंदर रंधावा जो स्वांग के फाउंडर मेंबर हैं उन्होंने बोला कि हमें कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ लिख के दिया, उन्होंने कुछ 6-7 पेजेस मुझे लिख के दिए, जो मैंने उनको कहा था कि आप उसमें ऐसा मत सोचिए कि उसमें प्रोज मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, एकदम स्वच्छंद लिखिए उसमें, छंद बने ना बने। और उस समय उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना ऐसा करें कि कुछ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें, और जो भी हम कहना चाहते हैं जिस थोड़ा मार्मिक है वो हम पंजाबी में रखें, और जो हम एग्रेसिवली कुछ कहना चाहते हैं वो हम हिंदी में रखें। तो इस तरह का कुछ एक स्ट्रक्चर बनाया था ताकि उसका ज़्यादा इम्पैक्ट हो सके, प्लस इसमें जो हमारे काफ़ी गानों में होता है कि एक वॉइस रहेगी जो कुछ पोइट्री पढ़ेगी। तो एक माँ की तरफ से, एक बच्ची की तरफ से माँ को एक लेटर था, एक पत्र था कि मानी मेरी मैं नहीं डरना, तेरे वर्गा मैं नहीं बनना, यानी माँ मेरी माँ मैं डरूंगी नहीं और मैं तेरी जैसी नहीं बनूंगी, मुझे डरपोक नहीं बनना, इस तरह का एक लेटर था वो, निर्भया का ही अपनी मतलब एक फिक्टिशियस लेटर था अपनी माँ के लिए। तो वो रविंद्र ने लिखा और फिर मैंने कंपोज किया था, और हमने मेरा एक छोटा स्टूडियो था वहाँ पर हमने ये सब रिकॉर्ड किया था, और रिकॉर्ड करके बस उसको सिर्फ लिरिक्स के साथ, हमने कोई वीडियो वगैरह भी बनाना उचित समझा नहीं, और वो जो भी भावना चारों तरफ थी उसको हमने अपनी तरह से वो प्रस्तुत किया। तो बस इतना ही है कि हम काफ़ी ज़्यादा इमोशनली चार्ज थे उस समय, और वैसा ही कुछ गाना बन पड़ा शायद।
रोहित भाई ये गीत हम सबके लिए सुनना और सुनाना बेहद ज़रूरी है, और इसी गीत पर हम अपने श्रोताओं को आज छोड़ रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम में आए, समय निकालकर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके एक बहुत ही पॉजिटिव फील मुझे महसूस हुआ, और मुझे यकीन है कि हमारे श्रोताओं को भी ज़रूर हुआ होगा। एक बार फिर आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
धन्यवाद सर।
बुरकी बुरकी विच मड़ाया, कीड़ा ए तू जाप जपाया, फिकरां दा तू रोना पाके, क्यों बस मन्नू डरना सखाया, मानी मेरी मैं नहीं डरना, तेरे वर्गा मैं नहीं बढ़ना,
डुप डुप जाना मैं नहीं तरना, मैं ता अखा बंद कर तुरना, फड़के जुत्ती हाथ विच खड़ना, ओ मैं ता अखा बंद कर तुरना, डुब डुब जाना मैं नहीं तरना, हो मैं ता अखा बंद कर तुरना, मानी मेरी मैं नहीं डरना, तेरे वर्गा मैं नहीं बनना,
ये काम नहीं है शहरों का, न रात का न दोपहरों का, न खाली खाली सड़कों का, न खिड़की का न पर्दों का,
कपड़े के नाप के फर्कों का, क्या मर्दों का ना मर्दों का, उनसे मैं शामिल तुम भी थे,
ये काम तो है हम दर्दों का।
मानी मेरी मैं नहीं डरना, तेरे वर्गा मैं नहीं बढ़ना।
बाबा ये काम तुम्हारा है, तुम जब जब मुझसे कहते थे बेटा घर जल्दी आ जाना, किस बात से इतना डरते थे? सामान हूँ चोरी हो जाऊंगी, महसूस मुझे ये होता था। हर बार तुम उनको हिम्मत देते, जब जब मुझको यूं रोका था।
कुत्ते से भागने वालों की वो बोटी नोच के खाते।
और राख मिला के देखो तो पिछवाड़े तुम तो पाते हैं, उनके में शामिल तुम भी थे। ये काम तो है हम दर्दों का।
धर्म तेरा तेरा रब भी डरदा, उन्ना जो ही गल्ला करदा। कहंदे औरत बौनी हुंदी, घर विच बैठी सोनी हुंदी। पंडित मुल्ला बाबा काजी, दुनिया एना खूब नवाजी। मैनी है ना मथे लाउणा, मर के तेरे कोल नी आउणा। रब्बा तेरे कोल नी आउणा।
डुब डुब जाना मैं नहीं तरना, ओ मैं ता अखा बंद कर तुरना। हर के चुप्पी हक विच खड़ना, ओ मैं ता अखा बंद कर तुरना।
मानी मेरी मैं नहीं।
ये काम पुलिस ये तेरा है, तेरी सोच है बिल्कुल उन जैसी। नाड़े के अंदर तेरे भी एक आम मर्द का डेरा है। असमत प्यारी तो घर में बैठ, तू उनके सुर में गाता है। तुम खाते पीते जुर्म के फीते बूटों में कस के बांधे हो। तुमसे मैं क्या उम्मीद करूं, वो सर तुम उनके कांधे हो।
तुम हो ये सोच के निर्भय जीना, जान की बाजी सट्टा है।
तेरी धौंस में तेरी पूंछ दिखे, गले में खादी पट्टा है। उनछे में शामिल तुम भी थे, ये काम तो है हम दर्दों का।
ये काम तो नेता तेरा है,